ओम शांति। आज हम सभी का विशेष सौभाग्य है जो आदरणीय दीदी हमारे बीच पधारे हैं। हम एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दीदी ने लाखों भाई बहनों को राजयोग की शिक्षा देकर परमात्मा के साथ जुड़ाया है। हजारों राजयोगी भाई बहनों को भट्टी के क्लासेस के माध्यम से पुरुषार्थ में कैसे अग्रसर हुए उसकी प्रेरणाएं दी है। हर वर्ष यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग होती है जिसमें आपने कई कन्याओं को ब्रह्मा कुमारी, एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी क्या होती है उसकी शिक्षा तो दी ही, लेकिन मैं समझती हूँ कि दीदी बोलने से भी पूर्व अपने जीवन से, अपने व्यवहार से सिखाती है। आप सेल्फ मैनेजमेंट की मुख्य वक्ता भी है। आपने कई कंपनीज में, नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में अनेक विषयों पर आपने लेक्चर्स भी दिए हैं। आपके द्वारा लिखे गए लेख अखबारों, पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, दैनिक जागरण, संस्कार, आस्था चैनल में और पीस ऑफ माइंड टीवी पर आपके प्रवचन प्रसारित हुए हैं। दीदी जी के लिए इतना ही हम कहना चाहेंगे कि दीदी जी आप परमात्मा शिक्षा का प्रमाण हो, आप सच्ची गीता का सार हो, आप अनेक आत्माओं के जीवन की नैया के पतवार हैं। आपके वाणी में मधुरता, आपके व्यवहार में विनम्रता, आपके दिल में उदारता है, आपके दिमाग की विशालता ही आपकी महानता है। आज बहुत सुंदर विषय लेकर दीदी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, सिद्धांतों के पहिए पर तपस्वी जीवन। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। शांति के सागर विश्व शांति दाता, नव विश्व निर्माता प्यारे बाबा ने हम सबको तपस्वी बनाया है। तपस्या का ज्ञान दिया और बाबा ने स्थापना में ही बहुत अच्छी तपस्या कराई। दादियां बताती रही कि बाबा बोर्ड पर लिख देते थे आज रोज 2 बजे से तपस्या चलेगी। रतन मोहिनी दादी बताते थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, हम घंटों एक ही संकल्प में लंबे समय तक तपस्या करते थे। इस प्रकार बाबा ने बहुत निरंतर ऐसी तपस्या कराई। आज हम समझेंगे कि तपस्वी जीवन किन सिद्धांतों पर चलता है। आपने प्रदर्शनी में योगी को देखा है। योगी जीवन 4 स्तंभ पर चलता है। ये प्राइमरी बात है। एक तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य हमारे तपस्वी जीवन का आधार है। बाबा ने ऐसा सत्य ज्ञान दिया कि हमारे जीवन में सहज ही इनकी धारणा हो जाती है। ब्रह्मचर्य पवित्रता का फाउंडेशन, सहज ही जीवन में आ जाता है। बाबा ने वरदान भी दिया है कि पवित्र बनो, योगी बनो। जितना पवित्रता धारण करेंगे उतना तुम्हारा योग बाबा से लग जाए, लगता रहेगा। दूसरा, अभी भी एक मुरली चली थी कि अन्न की परहेज रखनी जरूरी है। 17 जून को ही ये मुरली चली थी और बाबा ने शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन की बात कही थी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बने और अन्न शुद्धि न रखे। तो हमारा योग कम लगेगा। शुद्ध अन्न वैसा ही मन बनेगा। तो हम ये लक्ष्य रखें कि स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन हम करें। वर्तमान समय में कई ये सोचते हैं कि मशीन मेड खा सकते हैं। परंतु बाबा ने ऐसा नहीं कहा है। बाबा ने कहा है योग मेड खा सकते। मशीन मेड माना अनटच, पर मानव का जो पॉजिटिव साइड है, योग साइड, योग मेड, वो भी तो चाहिए ना। ये बाबा ने कहा है जब अन्न शुद्धि की बात है तो स्पष्ट है हमें कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके राज्य में, वरंगल तेलंगाना में आता है या आंध्र प्रदेश? तेलंगाना। आपके राज्य में तो शराब की छुट्टी है, परंतु बाबा की आज्ञा है कि कोई भी व्यसन और शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। अन्न शुद्धि माना व्यसन मुक्ति, हमें व्यसनों से भी मुक्त रहना। और तीसरा स्तंभ है सत्संग, नियमित ज्ञान योग का क्लास करना। हमारा सत्संग है बाबा से योग लगाना, सत्य पुस्तकों का संग, सत्य मित्रों का संग। इसलिए ब्राह्मण परिवार के संग बाबा की पढ़ाई पढ़ना ये बहुत जरूरी है। कोरोना काल में सब सीख गए कि ऑनलाइन क्लास करना है, परंतु ऑनलाइन अब तो नहीं करना है ना, अब तो पवित्र ब्राह्मणों के संग में बैठकर बाबा के मधुर महावाक्य सुनने हैं। और चौथी धारणा है दैवी गुणों की धारणा। दिव्य गुणों को धारण करना, ज्ञान को गुणों में बदलना, ये हमारा कर्तव्य है। ज्ञान गुण में बदल जाए और निरंतर हम उसकी धारणा करें तो गुणों की धारणा भी स्थायी बन जाएगी, प्रभावकारी बन जाएंगे, तो वो शक्ति भी बन जाएगी। ज्ञान को गुणों में, गुणों को शक्तियों में बदलना है। लंबे समय तक ये अभ्यास रहेगा तो हम ज्ञान की धारणा भी प्रैक्टिकल कर सकेंगे। ये चार धारणाएं उनके स्तंभ बने हैं और उस पर तपस्वी बैठा हुआ है। अगर ये चार स्तंभ मजबूत नहीं होंगे, स्थायी नहीं होंगी, स्थिर उसकी धारणा नहीं होंगी, तो हमारे ये मुख्य जो धारणाएं हैं वो कभी भी हमारे जीवन में स्थायी नहीं रहेगी। नियमों की धारणा, मर्यादाओं की धारणा स्थायी रूप से और प्रभावी रूप से, इफेक्टिव एंड परमानेंट, इन रूप से हम धारणा करेंगे तो तपस्वी जीवन महसूस होगा। इसलिए बाबा हमें रोज सत्य ज्ञान स्थायी रूप से धारण कराते हैं। बाबा का जब से यज्ञ शुरू हुआ, बाबा ने सत्य ज्ञान निरंतर हमें सुनाया। शिव बाबा का दिया हुआ सत्य ज्ञान ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से, चिंतन मनन से बहुत स्थायी रूप से धारण करवाए। मुरली को कितना इम्पोर्टेंस बाबा देते हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान ही हमारे में पवित्रता लाता है और ज्ञान को पवित्र रूप में धारण करने से हमारे जीवन में पवित्रता क्या लाती है, शांति और सुख की धारणा करवाती। बाबा ने कहा है पवित्रता शांति और सुख की जननी है। तो ज्ञान सत्य तो बाबा ने दिया ना, भक्ति में कितने ऋषि मुनि साधु संतों ने ज्ञान पर चिंतन किया, परंतु वे एक मत नहीं हुए। शंकराचार्य जी ने वैराग्य उत्पन्न कराया, परंतु उनके साथ साथ निंबार्काचार्य, रामानुजाचार्य और वल्भाचार्य, इन्होंने अपनी अनुभूति अलग ही कही। अद्वैत मत, द्वैत मत, द्वैता द्वैत मत, विशुद्ध अद्वैत, कितने प्रकार के मत मतांतर फैलाए और हरेक की मत अलग तो अंडरस्टूड है, उनके ग्रंथ अलग, संप्रदाय अलग हुए, मिल करके एक मत नहीं दी। यही कारण है कि फिर अनेक मठ पंथ हुए। ऐसा नहीं कि आपस में मिल करके एक मत दी। बाबा ने हमें अद्वैत मत सिखाया। बाबा की एक मत हमें जो मिली वो है श्रीमत, श्रेष्ठ मत। बाबा ने रचयिता और रचना का ज्ञान दिया, आलोक परलोक का ज्ञान दिया और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया, एक परमात्मा बाप ने सच्ची अद्वैत मत दिया, श्रेष्ठ मत श्रीमत दिया। ब्रह्मा बाबा ने उसी पर मंथन किया, चिंतन किया, मनन किया, परंतु बाबा ने जो ज्ञान दिया उस पर जो मंथन किया उसमें कोई भी अपनी मत नहीं ऐड की। इवन जगदीश भाई जी, जानते हैं ना सभी, हाँ, हमारा साहित्य लिखने वाले जगदीश भाई जी ने, बाबा ने उसको कहा कि लोग समझ सके ऐसी सिंपल भाषा में ये ज्ञान तुम लिखो। उन्होंने भी अपनी मत नहीं मिलाई। बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया उसी को उन्होंने धार्मिक रीति से, विज्ञान के रीति से और अनेक रीति से, अपने अनुभवों के रीति से ज्ञान ऐसा समझा के लिखा जो बाबा का सत्य ज्ञान प्रमाणित हुआ। सत्य ज्ञान को प्रूव किया। तो बाबा और ब्रह्मा बाबा मंथन चिंतन करके अपने अनुभवों को मिलाकर इस विधि से ज्ञान दिया जो सत्य प्रमाणित किया। अपने अनुभवों को ऐड किया फिर भी शिव बाबा की मत में कोई फर्क नहीं आया। इसलिए भगवान को कहा जाता है, परमात्मा को ही कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें तमस माना अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असतो मा सतगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इतने ऋषि मुनि संत चिंतक वैज्ञानिक लेखक कितनों ने लिखा, पर सत्य ज्ञान के लिए परमात्मा को ही कहते हैं, उनको ही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने अपनी मत मिलाए बिगर चिंतन मनन मंथन करके उसका विस्तार किया। उन्होंने जो किताबें लिखी वो सत्य ज्ञान के लिखी, बाकी भक्ति में कितने चिंतक लेखक वैज्ञानिक हुए परंतु किसी ने भी सत्य ज्ञान नहीं दिया। आलोक परलोक की सत्य बातें बताई। उन्होंने अपनी मतें मिलाई और जो ज्ञान पर मंथन किया उसको भी मिलावट का ज्ञान बना दिया। तो बाबा ने तीन लोक हमें बताए। ये फिजिकल वर्ल्ड, स्थूल लोक और मूल वतन, इसको ब्रह्म लोक परलोक कहा है और तीन देवताओं का सूक्ष्म वतन वो संगम युग में रचते। ये तीनों लोकों का ज्ञान दिया और तीन कालों का ज्ञान दिया। बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। चाहे हम कितने भी प्रश्न पूछे, पर बाबा जिसको समझते हैं कि जो जरूरी है वो ही मुझे समझाना है। मनुष्यात्मा जो जरूरी है पशु योनि में नहीं जाती है वो समझाया, पर पशुओं की आत्मा कहाँ जाती है वो कितना भी हम प्रश्न पूछे बाबा नहीं बताते। तो जो मनुष्य से देवता बनने के लिए जो आवश्यक है वो ही ज्ञान बाबा ने समझा है। बताते हैं ना, वो ही विनाश कब होगा बाबा नहीं बताते। अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा, बाबा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। 3 बार बाबा ने कहा। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी ज्ञान है वो ही बाबा ने बताया, क्योंकि बाबा का ज्ञान देने का लक्ष्य तो मनुष्य से देवता बनाना है। तो लक्ष्य के अनुरूप जो बातें जरूरी हैं वो सिद्धांत, वो सत्य ज्ञान बाबा ने बताया है। उसी ज्ञान को प्रथम ब्रह्मा बाबा ने, फिर जगदीश भाई जी ने, और अब तो अनेकानेक भाई बहनों ने चिंतन करके किताबें बनाई हैं। हर एक विंग वालों ने किताबें बनाई हैं, तो भी ज्ञान नहीं बदला है। वो ही मुख्य ज्ञान सेम रहा है। इस ज्ञान पर आधारित तपस्या जो है उसके लिए बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई। वो नियम मर्यादाएं हर ब्राह्मणों के जीवन में, नए भाई बहने भी वो नियम मर्यादाएं पालन करते हैं। वो आचार संहिता दादियों ने लिखी और ऐसे नियम हम सब भी पालन करते हैं। सब ऐसे नियम मर्यादाओं का पालन करने वाले आप सभी है ना? हाँ, पक्के ब्राह्मण आए हैं ना? हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। जो नए कोई आए हैं यहां भट्टी करने में, वे हाथ ऊपर करो। परंतु आप भी पक्के बनने के लक्ष्य से आए। मधुबन में आना, पांडव भवन में आना माना पक्का बनना। भले नए भाई बहने भी आए हैं, परंतु 10-12 हैं बस, वो भी पक्के बनने के लक्ष्य से आए, क्योंकि ये भूमि वरदानी भूमि है, तपो भूमि है, परिवर्तन की भूमि है, और दादियों की, बाबा मम्मा की कर्म भूमि है। यहां के कण कण में यज्ञ का इतिहास भरा हुआ है। दादियों और बाबा मम्मा सब आदर्श है हमारे। यहां आप देखते हैं कि मम्मा, बड़ी दीदी, बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी और रतन मोहिनी दादी, जो यज्ञ के जिम्मेवार बने, जिनके योग बल से अब तक यज्ञ चला, टोटल यज्ञ के आदि रतन 350 यहां आए माउंट में, वहां तो 400 से अधिक समर्पित हुए, पर यहां जब बेगरी पार्ट में चलना हुआ और वहां सिंध हैदराबाद छोड़ के भारत में आना हुआ, उस समय कई चले गए। तो जो 350 रत्न आए थे, उन्होंने भी तप किया और अब 350 आदि रत्न चले गए। समय प्रति समय शरीर छोड़ के वो लोग चले गए एडवांस पार्टी में। हम सभी भी बाबा के बताए हुए नियम मर्यादाओं पर चलते हैं। हर एक सेंटर में बोर्ड लगा हुआ है बाहर, सूचना करके लिखा है ना कि यहां कोई भी अशांति फैलाने वाले, 5 विकारों के वश विकर्म करने वाले कोई भी रह नहीं सकते है। पुराने सेंटरों में बोर्ड लगा हुआ है, अरुणा बहन लगाया है बोर्ड? कौन बहनों ने लगाया है? नहीं, फिर से लगाना चाहिए। यहां विकारों के वश झगड़ा करने वाले, अशांति फैलाने वालों को आने की छुट्टी नहीं। अगर ब्राह्मण बनकर कोई काम वासना के वश हो जाता है, तो ज्ञान का पहला ही पाठ नहीं पढ़ पाता है। बाबा पहला पाठ कौन सा सिखाते हैं? आत्मभिमानी बनो, पवित्र बनो। वो पहला पाठ ही नहीं पढ़ सकते, और जो पहला पाठ नहीं पढ़ेंगे वो जो लास्ट पाठ है अशरीरी बनना, नष्टो मोहा बनना, स्मृति स्वरूप बनना, ये पाठ वो पढ़ ही नहीं सकेंगे। इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। क्रोध महाशत्रु को जीतना बहुत जरूरी, काम महाशत्रु को जीतना जरूरी है। और जो ब्राह्मण बनकर अभी भी क्रोध के वशीभूत होते हैं वो आत्माओं का प्यार नहीं पा सकते। कोई भी उनके साथ सेवा करना पसंद नहीं करे। सब बहन जी को बोलेंगे कि ये बहुत क्रोध करते हैं, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे। हम अपने आप सेवा कर लेंगे पर क्रोधी के साथ सेवा नहीं करेंगे। वो आत्माओं का प्यार नहीं पा सकेंगे। जो ब्राह्मण बनकर भी लोभ के वशीभूत होते हैं वे अपना भाग्य नहीं बना सके, वे अपने खजाने सेवा में यूज नहीं करेंगे। स्थूल और सूक्ष्म दोनों खजाने सेवा में यूज करने हैं। बल्कि बाबा तो कहता है बाप दादा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप को देख के अपना सर्वस्व यज्ञ में स्वाहा कर तो पूरा भाग्य मिलेगा। और ब्राह्मण बनकर जो देह संबंधियों के मोह में फंसते हैं वे परमात्मा का प्यार नहीं पा सकते, क्योंकि वो ही मोह जाल में फंसे रहेंगे तो उनका बुद्धि योग परमात्मा को नहीं पहुंचेगा। और अगर अभिमान के वश होते हैं, अज्ञान काल में तो अपना पद प्रतिष्ठा धन साधन रूप ज्ञान बुद्धि पढ़ाई, ज्ञान माना पढ़ाई, इस किसी भी प्रकार का अभिमान होगा और बाबा से प्राप्त विशेषताओं का अभिमान होगा। मान लो उनकी गिरती कला शुरू हो जाएगी, वो उनका पतन शुरू हो जाएगा, वो अपनी चढ़ती कला नहीं कर सकेंगे। बाबा ने तो कहा ही है विशेषताएं प्रभु की देन है। हमारी लौकिक विशेषताएं हैं, बाबा उसको डिविनाइज करता है। उन विशेषताओं को बाबा संपूर्ण बनाता है। तो बाबा की ही वो विशेषताएं हुई ना, बाबा की दी हुई जो विशेषताएं हैं उसका भी अभिमान नहीं आना चाहिए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बाबा की विशेषताओं को प्राप्त करने के बाद अगर हमारे में आलस रहा, अलबेलापन रहा, तो ये खजाना मिलने के बाद भी, बाबा की विशेषताओं को पाने के बाद भी आलस और अलबेलापन पुरुषार्थ करने नहीं देगा। आलस नहीं होना चाहिए, अलबेलापन नहीं होना। है किसी में आलस? हाँ, अलबेलापन है। ये आलस और अलबेलापन, भगवान के खजाने मिलने के बाद भी भाग्य बनाने नहीं देगा। न पढ़ाई पढ़ेंगे, न सेवा करेंगे, अलबेलापन छोटे विकार है, आलस छोटे विकार है, पर वो बहुत बड़ा भाग्य बनाने से हमें वंचित करते हैं। तो तपस्वी जीवन हमें जीना है। यहाँ भट्टी करने आए हैं, बहुत अच्छा मौका मिला है, इसलिए बहने तो ग्रुप के लिए मांगती ही रहती है, हाँ, मुन्नी बहन के पास। 6 मास यहाँ भट्टियाँ चलती हैं और 6 मास विदेशी रहते हैं। विदेशी भी जो पुराने हैं वो यहीं रहना चाहते। यहाँ बहुत अच्छा योग लगता है। आप भी 4 धाम की यात्रा करते होंगे, अच्छी तरह बैठ के योग करते होंगे। जब कभी भी आपका टाइम बनाया है उस समय आप योग करते होंगे। लास्ट बात मैं कहती हूं कि कोरोना काल में सबको फुर्सत थी, क्योंकि नौकरी धंधे पर जाना नहीं था, किसी को घर से बाहर निकलना था नहीं था, सबके पास फुर्सत थी। परंतु अनुभव क्या है, बुद्धि एकाग्र होती थी, फुर्सत थी, परंतु टाइम आपको बहुत मिला, पर क्या एकाग्रता होती थी? मुरलियां पढ़ी, अव्यक्त वाणियां पढ़ने की फुर्सत थी और मन सा सेवा करने की फुर्सत थी। परंतु आप अपने को चेक करिए, इसमें मन लगा? चेक करिए। तो ऐसा ही ये मौका है, एक ही बार ये तो मिलता है। इस भूमि पर रहने का सौभाग्य मिला है, आप पूरे दिल से प्यार से इस भूमि का लाभ लीजिए, बाबा से योग लगाइए, और दृढ़ता और लक्ष्य पूर्वक जितना आप योग लगाएंगे वो ही आपकी तपस्या मानी जाएगी। दृढ़ता हमारे में हो और समझ पूर्वक लक्ष्य बने, आप तपस्वी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी का बहुत 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 थैंक्स है, जो हमें बेसिक सिद्धांत भले हमें पता भी है लेकिन उसकी डेप्थ दीदी ने हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट करी। अभी हम योग करेंगे और तेलुगु सॉन्ग दीदी गाएंगी एक कन्या।
ओम शांति। निर्मल मनसु तो निश्चय बुद्धि तो शिव परमात्मनि కలవాలి, నిర్మల మనసుతో నిశ్చయ బుద్ధితో శివ పరమాత్మని కలవాలి, నిరంతరము ఆ నిరాకారుని విస్మరించక నడవాలి, నిరంతరము ఆ నిరాకారుని విస్మరించక నడవాలి, అనంతమగు ఈ అఖండ సృష్టిలో జగన్నాటకం చూడాలి, పరమగుహ్యమగు జ్ఞానామృతమును తనివి తీరగా పొందాలి, అనంతమగు ఈ అఖండ సృష్టిలో జగన్నాటకం చూడాలి, పరమగుహ్యమగు జ్ఞానామృతమును తనివి తీరగా చూడాలి, నిర్మల మనసుతో నిశ్చయ బుద్ధితో శివ పరమాత్మని తరవాలి, సారరహితమగు సంసారములో నిమిత్తమై నడవాలి, పాప విముక్తికి పరమేశునితో సదా యోగము చేయాలి, సారరహితమగు సంసారములో నిమిత్తమై నడవాలి, పాప విముక్తికి పరమేశునితో సదా యోగము చేయాలి, అక్షయ పుణ్యము సాధించుటకై విశ్వసేవనే చేయాలి, శ్రేష్టమగుటకు శ్రీమతమ్ముపై దృఢ నిశ్చయముతో నడవాలి, దృఢ నిశ్చయముతో నడవాలి, నిర్మల మనసుతో నిశ్చయ బుద్ధితో శివ పరమాత్మని కలవాలి, కర్మయోగులుగా సకల కర్మలు అతి కుశలతతో చేయాలి, వికార పూరిత విశ్వంలోన కమల సమానులు కావాలి, కర్మయోగులుగా సకల కర్మలు అతి కుశలతతో చేయాలి, వికార పూరిత విశ్వంలోన కమల సమానులు కావాలి, కలియుగమందున పావన జీవన పరిమళము వెదజల్లాలి, జ్ఞానయోగముతో శక్తిని చేకొని గగన తలమ్మునకెగరాలి, గగనతరం మనకెగరాలి, నిర్మల మనసుతో నిశ్చయ బుద్ధితో శివ పరమాత్మని తలవాలి।